వ్యాప్తం తత్ప్రవయా సదో విజయతే నీలోత్పలానాం వనం ధ్వాంతం వాక్చ మనోగతం దుతువతి భానుజాంభాసురాం బోధశ్చాఖిలజం తమో వ్యపహర బ్రగ్నం జగద్వందితం వందేతం ముని సుబ్రతస్య భగవన్ సార్ధం తవేంద్రాదివి కార్యం కారణతో గుణం చ గుణినో భేదం చ సామాన్యతో వక్తిక రతగేవ కోప్యథగిత్యేకాంతతో నద్వయం తత్సర్వం ఘటతే తవైవ నయసై యోగాత్తతస్తం సతా మాప్తో భూర్ముని సుప్రతాయ భగవన్ తుభ్యం నమః కుర్మై తుభ్యం నమః కుర్మై. జలో ముని సుబ్రతనాథ్ భగవాన్ కీ జయ. భగవాన్ ముని సుబ్రతనాథ్ కే చరిత్ర కో కహతే హువే ఆచార్య శ్రీ గుణభద్ర స్వామి ఉత్తర పురాణ మే కహతే హై కి హే ప్రభు, आपके शरीर की प्रभा से व्याप्त हुई ये सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलों का वन ही हो. भगवान की शरीर की प्रभा नील वर्णी थी, उसको उपमा अलंकार से अलंकृत करते हैं. हृदयगत अंधकार को नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्य से उत्पन्न दीप्ति को पराजित करते हैं. इसी तरह आपका ज्ञान भी संसार के समस्त पदार्थों से उत्पन्न हुए अज्ञान अंधकार को नष्ट करता है. इसलिए हे मुनि सुव्रतनाथ भगवान, जिसे इंद्रादि देवों के साथ साथ सभी संसार नमस्कार करता है, मैं आपके उस ज्ञान रूपी सूर्य को सदा नमस्कार करता हूँ. केवल ज्ञान सूर्य है, सूर्य की उपमा दी गई है केवल ज्ञान को. और सूर्य तो भले ही केवल दिन में निकलता है, लेकिन केवल ज्ञान का सूर्य जिनके हृदय में उत्पन्न हो गया, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान का ज्ञान सूर्य अहर्निश अनंत काल तक उदित रहने वाला ही है. कोई तो कारण से कार्य को, गुणी से गुण को और सामान्य से विशेष को पृथक बतलाते हैं और कोई अपृथक बतलाते हैं. ये दोनों ही कथन एकांतवाद से हैं, अतः घटित नहीं होते, परंतु आपके नए के संयोग से दोनों ही ठीक ठीक घटित हो जाते हैं. भगवान के यहाँ गुण और गुणी, सामान्य और विशेष सब एक साथ घटित हो जाते हैं. इसलिए ये भगवान सज्जन पुरुष आपको आप्त कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं. भगवान को क्या कहा? आप माने सच्चे भगवान, सच्चा ईश्वर जो दोष और आवरण से रहित होते हैं. आजकल आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय, उसकी क्लास चलती है और उसके अंदर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र को आप्त मीमांसा भी कहा है कि आप्त की इन्हें सच्चे भगवान कि कैसे परीक्षा करके श्रद्धा और गुणज्ञता के साथ उनके गुणों को पहचान लेना, ये आप्त मीमांसा के अंदर पढ़ने पर ज्ञात होता है. उसी बात को इस उत्तर पुराण के अंदर श्री गुणभद्र स्वामी ने भगवान को सच्चे आप्त कह करके और उन्हें ये कहा कि आप को हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि आपके शासन में अनेकांतवाद है. आपका शासन स्याद्वाद सप्तभंग से युक्त है. इसलिए हे भगवान, हे मुनि सुव्रतनाथ भगवान, आपने केवल व्रतों को ही नहीं ग्रहण किया है, बल्कि अपने भक्तों को व्रतों की ओर झुकाया है, व्रतों को धारण करने की प्रेरणा दी है और आपकी दिव्य ध्वनि से संसार का मिथ्यात्व अंधकार दूर हो जाता है. ऐसे भगवान मुनि सूरतनाथ का जीवन चरित्र कितना सुंदर सुना। वर्तमान में भगवान मुनि सूरतनाथ विशेष रूप से शनि ग्रह के अरिष्ट निवारक के रूप में माने जाते हैं, और जब किसी की कुंडली में शनि ग्रह होता है तो उसकी शांति के लिए लोग मुनि सूरतनाथ की खूब पूजा आराधना करते हैं। हमने देखा अभी तो ये मुनि सूरतनाथ भगवान, इनका पंचकल्याणक भी नहीं हुआ, लेकिन इन भगवान के आते ही सबके हृदय के अंदर शनि ग्रह के अरिष्ट निवारक के रूप में भावनाएं उत्पन्न होने लगी, और इनके सामने अभी से ही भावना भाने वालों के शनि ग्रह का अरिष्ट शांत भी होने लगा। ऐसे मरगज मणि के श्याम मणि ये मुनि सूरतनाथ भगवान जब वेदी में विराजमान हो जाएंगे तो मंदिर के अंदर चार चांद लग जाएंगे। बहुत सुंदर वेदी बनी हुई है, चारों तरफ से काले पाषाण के अंदर भी खूब भाव दर्शाए गए हैं, और उनमें विराजमान भगवान मुनि सूरतनाथ शनि ग्रह ही क्या सारे ग्रहों का नाश करेंगे और भक्तों को पुण्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। हम आपको अभी भगवान मुनि सूरत के मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमने आपको भगवान की दीक्षा के पश्चात कैसे उनको केवल ज्ञान होता है, कैसे वे श्रेणी पर आरोहण करते हैं, इस बात को बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे जिज्ञासु भाई बहन जो हैं, वे गुणस्थानों की भी बात जानना चाहते हैं। कल तक हमने आपको 14 गुणस्थानों में से प्रथम गुणस्थान से लेकर 7 गुणस्थान तक की बात बताई कि एक श्रावक जो गृहस्थ के कार्यों से निवृत्त होकर वैरागी बनता है तब वो दीक्षा लेने के अभिमुख होता है, और आपको ये जानना है कि कोई चतुर्थ या प्रमथ और अप्रमथ विरत मुनियों के माध्यम से इस गुणस्थान की व्यवस्था को आप जान सकेंगे। तो ये बात कही है कि सातवें गुणस्थान के दो भेद होते हैं, स्वस्थानाप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। पंचम काल के संतों को स्वस्थान अप्रमत्त लेकिन सारी कर्मों का नाश नहीं हो पाता। अब रही बात, आप विदेह क्षेत्र में है, वहां प्रतिक्षण संत मोक्ष भी जा रहे हैं, अपने कर्मों का क्षपण कर रहे हैं, लेकिन गुणस्थान की व्यवस्था को जानिए कि जब हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी पुनः चौथा काल आएगा, तीर्थंकर जन्म लेंगे वे भी, और उनके साथ तमाम महान मुनिराज भी सातवें से आगे गुणस्थान में उत्सव श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ने वाले बन जाएंगे, तब हम चलते आठवें गुणस्थान में। देखो सात गुणस्थानों के नाम याद कर लो, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत और प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, और आठवां गुणस्थान में आए जिसका नाम है अपूर्व करण। करण माने होता है परिणाम, अपूर्व माने जिनको कभी पूर्व में नहीं किया। तो जिस समय भावों की विशुद्धि से उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम होते जाएं, अर्थात भिन्न समयवर्ती मुनि के परिणाम भी सदृश ही हों और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हों और विसदृश भी हों, उसको अपूर्व करण कहते हैं। एक समय बहुत सारे कई मुनिराज जब सात आठवें गुणस्थान में चढ़े, जैसे समझो पांडव थे, पांचों एक साथ उपसर्ग को झेल रहे थे और एक साथ कर्मों के क्षपण करने में लगे हुए थे, तो आठवें गुणस्थान में जो एक साथ श्रेणी चढ़ना शुरू करते हैं उनके परिणाम एक सदृश भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और जो भिन्न भिन्न समय में, किसी ने अभी किया, किसी ने दो मिनट बाद किया, किसी ने आधा घंटे बाद किया आठवां गुणस्थान में प्रवेश, तो उनके भिन्न भिन्न परिणाम ही रहेंगे। देखो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन छपक श्रेणी चढ़ करके और मोक्ष चले गए थे कर्मों का नाश करके, और नकुल और सहदेव उपसम श्रेणी चढ़े, माने दो श्रेणियां हैं, दो सीढ़ी हैं। जिनको ग्यारहवें गुणस्थान पे जाना है तो उसको कहते हैं उपसम श्रेणी, और जिनको 11वें गुण स्थान को पार करके जाना है, 12वें गुण स्थान में 10वें से सीधे 12वें में जाना है, उसको कहते हैं छपक श्रेणी। तो 11वें गुण स्थान वर्ती में जब जाते हैं, वे उपशांत कसाय वाले कहलाते हैं। वहां जाकर के जीव का समय अगर समाप्त हो जाता है तो वे वहीं पर या तो मरण करते हैं, माने आयु समाप्त हो गई तो मरण करके जाके बीजादि द्विचरम में उत्पन्न हो जाते हैं, 5 अनुत्तरों में, और या फिर नीचे गिरते हैं। मान लीजिए कोई परिणामों की ऐसी अशुचिता या थोड़ा सा परिणाम में संक्लेश या कुछ हुआ तो वे नीचे गिर जाते हैं। 7वें 6ठे में भी आ सकते हैं, 5वें में भी आ सकते हैं, 4थे में भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि 1ले गुण स्थान में भी आ सकते हैं उपसम श्रेणी वाले। तो ये 8वें गुण स्थान से मैंने आपको बताया अपूर्व करण से इस श्रेणी का क्रम शुरू होता है। भगवान ऋषभ देव का जब वर्णन पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान ऋषभ देव ने पूर्व भाव में 2 बार उपसम श्रेणी पर आरोहण किया, और उसके बाद जब ऋषभ देव की अवस्था में आए तब उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके और शीघ्र ही अंतर्मुहूर्त में कर्मों को काट करके और 13वें गुण स्थान में जा करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये अपूर्व करण माने उसके गुण स्थान के नाम से अर्थ लगाए कि जो परिणाम पूर्व में पहले नहीं हुए ऐसे परिणाम होना अपूर्व करण है, और ये गुण स्थान केवल मुनियों को ही होता है, श्रेणी चढ़ने वाले मुनियों को, आज की तो कोई बात ही नहीं। और चतुर्थ काल में भी कभी किसी गृहस्थ को 5 गुण स्थान से ज्यादा नहीं हो सकते, यह ध्यान रख लेना। अगर कोई सोचे कि हम डनलप के गंदे गद्दे में बैठे बैठे सोते सोते एयर कंडीशन में रहते रहते वस्त्र धारण करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कर्मों को नष्ट कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। ये पत्थर की नाव के समान अपनी आत्मा को संसार में डुबाने के समान है। तो अपूर्व करण गुण स्थान तो 8वां हो गया, जब 6ठा 7वां भी किसी श्रावक को नहीं हो सकता, 8वें की तो बात ही नहीं है। अब हम चलते हैं 9वें गुण स्थान में। 9वां गुण स्थान उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण माने जिस गुण स्थान में एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम सदृश ही हो और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी सदृश ही हो, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अपूर्व करण में जैसे कहा था कि एक समयवर्ती के एक सदृश भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान ही होंगे और भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न ही होंगे, ये इस गुण स्थान की पहचान है। और 9वां गुण स्थान ये मुनियों के ही होता है, इसके भी जब हम डिटेल में जाएंगे। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये बाल विकास भाग 4, पूज्य ज्ञानमती माता ने क्या किया है, बाल विकास के 4 भाग बनाए हैं। और 4थे भाग को अगर आप पढ़ लें तो आपको गोमट सार जीव कांड कर्म कांड इसका संक्षेप में पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें बहुत संक्षेप में गुण स्थानों का भी वर्णन है। जब डिटेल में जाएंगे गोमट सार कर्मकांड को लेंगे, लब्धि सार छपना सार को लेंगे, तब 9वें गुण स्थान के 2 भाग हो जाते हैं, सवेद भाग और अवेद भाग। और अवेद भाग में फिर क्या होता है कि वहां वेद द्रव्य वेद रहता है, भाव वेद सारे नष्ट हो जाते हैं। और आगे जाकर के 10वें गुण स्थान में जिसका नाम है, इसमें अनिवृत्तिकरण में कहा है कि अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों करणों के परिणाम प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए होते हैं। जैसे जैसे गुण स्थान चढ़े तो नाम ही है गुण स्थान, गुणों के स्थान, तो वैसे वैसे परिणामों की भी विशुद्धि अत्यंत विशुद्धता वहां बढ़ती बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब तो कर्मों का नाश करने की ओर चल रहे हैं, ऐसी विशुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं समझो मुनि सुव्रतनाथ भगवान। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने से पहले की ये स्थिति आप गुण स्थानों के माध्यम से समझ रहे हैं, और इस माध्यम से गुणस्थान की संपूर्ण व्यवस्था समझ करके आने वाले काल में हम भी ऐसे चढ़ने वाले गुणस्थानों को दिगंबर अवस्था धारण करके और प्राप्त करें, इसी भावना के साथ भगवान मनुष्यनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके पुण्य चरित्र व्याख्यान माला के माध्यम से अपने परिणामों को विशुद्ध बनाए, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा।